नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करते हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।